ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज नेशनल मीडिया कॉन्फ्रेंस के प्लेनरी सेशन 2 में आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है, शुभ स्वागत है। आज के इस सेशन का विषय है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता बनाम कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आइए मूल्यों के स्रोत, बुद्धिवानों के बुद्धिवान, परम प्रिय परम पिता परमात्मा के श्रेष्ठ सानिध्य में स्थित होकर इस सेशन का शुभारंभ करें। खुशियों की बहार है प्यारा, ये प्रभु परिवार है। शांति सद्भाव से महक रहा ज्ञान सरोवर है, ये अपनों का संसार है। स्वागत आपका बारंबार है, स्वागत आपका बारंबार है। सूरज के बिना सुबह नहीं होती, चांद के बिना रात नहीं होती, बादल के बिना बरसात नहीं होती और वक्तागणों के बिना कार्यक्रमों की शुरुआत नहीं होती। तो आज कार्यक्रम को शुरुआत करने के लिए वक्तागणों का मैं आह्वान करती। मीडिया कॉन्फ्रेंस में हो रहे सभी सेशंस का लाइव टेलीकास्ट यूट्यूब चैनल बीके मीडिया विंग में हो रहा है और पीस ऑफ माइंड चैनल पर भी हो रहा है। आज के वक्तागणों को मैं सादर आमंत्रित करती हूं। भ्राता के श्रीनिवासन जी, चेयरमैन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन चेन्नई। भ्राता ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई, नेशनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग मुंबई। डॉक्टर सारिका ठक्कर, डायरेक्टर जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन नोएडा। डॉक्टर सोमनाथ जी वडनरे, असिस्टेंट प्रोफेसर स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज जलगांव। भ्राता कुंवर राज अस्थाना, सीनियर जर्नलिस्ट देहरादून। राजयोगिनी बीके चंद्रकला बहन, जोनल कोऑर्डिनेटर मीडिया विंग जयपुर। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। आइए कार्यक्रम की शुरुआत में हम परमात्मा की मधुर याद से आरंभ करें। शांति में बैठें, गीत के शब्दों के अर्थ को सुनते हुए अंदर में समाते हुए प्रभु स्मृति में बैठें। हमारे आज के वक्तागणों का स्वागत सत्कार करने के लिए आमंत्रित करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों को कि मंच पर आए और पुष्पों से स्वागत करें, बैच से सम्मानित करें। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस विषय पर एक्सपर्ट हमारे साथ हैं भ्राता श्रीनिवासन जी। तो सर्वप्रथम मैं उन्हीं को आमंत्रित करूंगी। के श्रीनिवासन जी, पॉपुलरली नोन एज प्राइम पॉइंट श्रीनिवासन, जिन्होंने दो पब्लिक सेक्टर बैंक्स में 25 इयर्स तक सेवारत रहे, He has started public relations and communication consultancy. He is also known as a non-profit trust Prime Point Foundation Start Kiya to promote communication awareness. He is a visiting faculty in various educational institutions on subjects like communication, perception management, public relations and digital 3D. He is one of the earliest podcasters at the global level. Prime Point Foundation ke 5 initiatives hain: e-magazine presence, digital journalist, educational loan task force, Association of India, Sansad Ratna Awards and Next Generation Political Leaders. Aise 5 initiatives ke founder K. Srinivasan ji ko main amantrit karti hoon. I now request Brother Srinivasan ji to express his valuable views on today's subject.
Om Shanti. I am grateful to Brahma Kumari's Media Wing for giving me an opportunity to give a basic information and knowledge about AI tools and technologies, techniques for journalists. When Sarala Beginji called me 15 days back or 20 days back about this, she wanted that I should speak about AI. Even in Gurgaon media conference also in the August, I spoke about AI challenges and opportunities. And she was suggesting that why not we have one handbook also for the journalists. Enthused by her, we started writing a book. Yesterday it was released, Journalist Handbook for AI Tools and Techniques, which can be downloaded from our site. I will share with you, or you can send one WhatsApp to me. I will share personally to you. We have covered what are the basic requirements of a journalist. Given 40 minutes time, I will take you through some of the important features of AI, how it is relevant for journalists and also for spiritualism. Shantanu Bhai called me one day about discussing about that. He was asking me, sir, can you briefly, in a 2 or 3 sentence, can you explain what is AI? Then suddenly I told him, you imagine a situation. God is creating a beast, consists a combination of an elephant, lion and a tiger, all put together, or you can add some more also according to your imagination. A beast with the most powerful energy, and that beast has been, somebody comes and leaves the beast at your house in your room and walks off. The beast has got such a powerful wonders, it can do good and bad, and it depends on the command. What command you are getting, you are giving, that will obey. Even if there is a small error in your command, that will eat you away. You have to be cautious. With that caution, I start my presentation. I am thankful to Dr. Professor Aruchelvan, who is the HOD of Media Science, Anna University, who has been helping me in this following up this presentation. Now let me first show you one example. Before I enter the PowerPoint presentation, I want to show you one demonstration. Can you open that PDF file 4x24, presence 424, that you can imagine, the first page you will show you that. I think all of you are seeing that screen. This is my latest e-magazine, April e-magazine. There we wrote a cover story on women empowerment. How women should be and are hesitating to come to the top management. For that particular image was created by AI. This image what you are seeing on the screen was created by AI tool. Number two, can you show the railway, the rail engine, that fifth page or sixth page? We wrote a cover story on Loco Pilot, the latest edition. We wrote a cover, next page, Loco Pilot. In the Loco Pilots, I explained what are the problems of the Loco Pilot while they are running a super fast train. For 6 hours, 7 hours, they are running the train without any toilet facilities inside. So, I have explained, I gave a prompt, I wanted that AI to draw an image for that particular cover story. That cover story, this is the image drawn by AI. More than the cover story, that image got, that is the latest, only on the 1st May I released this e-magazine. I am also a learner, like you only. Nobody is an expert, somebody was telling. I am not an expert, I am a learner. I am also learning in the process. Every day I am also trying to learn. And what I have learned 1 month back is of no relevance now today. That is, every day we need to update ourselves. This is one of the powerful image creator. So now let me go in for the PowerPoint presentation. Then what AI, how many AI tools are there? I will also show you some demonstration, live demonstration, how as a journalist we can make use of the AI. I think simultaneous Hindi translation also is going on. I will also show how a language journalist can make use of the AI very effectively. PowerPoint presentation. AI, artificial intelligence, it is a not very recent, it was one of the oldest concepts. Now it is becoming more and more powerful. Like I said, the beast, most powerful. What you need to learn is how to give a command and get the works done. There are a lot of AI tools have come. Probably you might be seeing in your social media and other things, lot of AI tools. As a journalist, if you confine yourself, I'm not talking about the video journalist, for example, it is different, only basic thing I am giving. For general journalist, it is enough if you know about four of them. ChatGPT, probably many of you might be aware, that is one of the earliest AI tool, OpenAI. Now it has 3.5 is the free edition that everybody can use. You just go and in a Google and put ChatGPT, the first link you click, ChatGPT. The 4.0 edition, now it is a paid edition, but it is powerful. But for as far as the journalists are concerned, 3.5 is sufficient. Then Google has come out with Gemini. That is also one of the powerful AI tools. Only I am going to talk about four AI tools which you can keep it yourself. Don't go for too many AI tools. It will confuse you. As far as a journalist is concerned, it is all the four are free and you can make use of them very powerfully. Four AI tools. Second is Gemini. It is run by Google. The Bard was there. Now the Bard has been made as a Gemini. That is also, you can go to gemini.google.com. You can go and make use of that. It is also free edition. Microsoft has also come out with one AI tool known as Copilot. Copilot. If some of you want my PowerPoint presentation also, I can share with you. You can send me, at the end I will share my mobile number, WhatsApp number. You can send a WhatsApp to me. I will share the PowerPoint presentation through WhatsApp. You can also go through. And if you want, you can take the screenshots also. Copilot. Copilot.microsoft.com. That is, Microsoft has got a search engine known as Bing. B-I-N-G. Bing. This is like Google has got a search, Microsoft has got a Bing search engine. Now, the fourth one is Claude. C-L-A-U-D-E dot A-I. क्लॉड दट इज अनदर पवर्फुल रीसेंटली डेवलप्ड एआई पर्टिकुलरली फॉर जर्नलिस्ट वेन यू वॉन्ट टू गो फॉर स्टडींग सपोज यू हैव सम 25 pages ऑफ पीडीएफ सो यू हैव सर्टन कोर्ट जजमेंट एंड सुप्रीम कोर्ट गिव सम जजमेंट और यूर हाई कोर्ट इन युअर एरिया गिवस सम सच जजमेंट and you are not able to have you don't have a time to go through the judgment you can upload that pdf and then you can take the essence of that what is that summary of it that is it is a special feature of that Claude in the gemini in the copilot you can create a fantastic images also I will demonstrate before you the two images which I have shown was drawn through the copilot image What are the important things that you have to note down? Is you don't have the reliability. We are talking about credibility. To what extent they are credible, you have to be doubtful. Because I am not giving you 100% guarantee of the credibility. Because the AI tools not like a search engine. That is the vast difference between search engine and AI tools. I have written one chapter, we have devoted one chapter for the search engine versus AI tools in the book, which I will share it at the end. So the search engines go and search which are the available news reports or available things on the net and then brings you only the link. Maybe a report from the Times of India, a report from Hindustan Times, or a report from the Statesman or Hindu or Indian Express that gets Google or Bing brings you the link. It is up to the credibility of the or the news organization. Whereas in the case of AI tools, the AI tools are trained by the makers. They are trained like. Robots that trained in the training they get a lot of inputs see for an example I am telling you even I have tested we are running for the 15 years we are providing or we are honoring the outstanding parliamentarians as suggested by Dr. APJ Abdul Kalam as Sansad Ratna awards so I asked the one of the AI write in brief 300 words about Sansad Ratna Awards and who are all the important recipients of the Sansad Ratna Award to honor the outstanding parliamentarians. What has happened is, Indian Parliament also is giving an award, outstanding parliamentarian award, for every 5 years they give 3 or 4 awards they are giving it. Indian Parliament. Whereas we are giving every year 7 or 8 awards. That's a different. Both the purpose is different. Outstanding parliamentarian becomes the common. Ours is known as Sansad Ratna. They are known as outstanding parliamentarian. What Indian Parliament is giving it. So the AI tools get confused and they brought the names. All the names, many of them 90% were right. They included Dr. Manmohan Singh also. Manmohan Singh was not honored by us in Sansad Ratna. By the time when we opened the Sansad Ratna, he was the Prime Minister. We started in 2010. So how it has created is outstanding parliamentarian, the common terminology of outstanding parliamentarian you took up, and outstanding parliamentarian, Manmohan Singh also has received an outstanding parliamentarian award from the parliamentary system. So it got confused, that is included, but Dr. Manmohan's name also in my list. So one has to be very careful. When you are using AI tools for your journalism, please don't copy and paste. You have to verify the facts. How to verify the facts? You may have to use a different tool or search engines, and whether it is right or wrong, you have to use the site or anything. That you have to be very careful. Another important thing is bias will be there. The bias, some of the paper nowadays, we are seeing the many of the media in India, they are all biased. Some people pro-Modi, some people anti-Modi. So what will happen? We can't rely on one particular media. Somebody will be talking only about pro-Modi. Somebody will be talking about anti-Modi. So the neutrality is gone. So in the same way, The AI tools also can be trained. Now, to the extent it is neutral, in future it can be tuned to become biased. Say for an example, if you are going to ask for a write up about a particular leader, international leader, that Google or any of the AI tool can be trained to become an adverse opinion about that particular leader. So you have to be careful about that. So the AI tools, it is not at all 100% perfect. The AI tools can be biased, can give a wrong information. So you have to keep in mind all the relevant ideas in your mind before you use your AI tools for your purpose. As a journalist, how can I use AI tools? I have a laptop, I have an internet. How I can use it? I don't know. Can I ask one question? How many of you are using AI tools in this audience? Can you raise your hands? I think nobody is using it. Okay. 4 or 5 are using it. And you can improve your using, keeping this mind in mind. And you can also take the book and read it. And others, you can start using AI with a pinch of salt. I don't say you please don't reliably use, I never say. You have to be. Then AI, you must use AI as your companion, as your assistant, is your typist, is your clerk, is your PA, he is your personal secretary. That's all. He cannot boss you. You have to boss him. So sometime when we allow the companion to boss over us, then the problem comes. Keep in mind, all the AI tools are only your companions. You must use them properly to get your things done, and it has to go according to your direction. Okay, how can I give a direction? Before I go for a demonstration, you must use one word in the AI environment. One word that you must understand is prompt. Suppose I told you the beast. A beast combination of an elephant, a tiger and a lion. That is a new beast, a new type of beast. It can work only on command. That command, you must know how to give a command. If you give a proper command, that is known as prompt. That is, now a new courses have come. Probably many of the universities might be introducing also one paper or anything, prompt engineering. Prompt engineering is becoming very, very famous nowadays. Prompt is not only for journalism, it is applicable for everything. This prompt is required. Anything, if you want to make use of an AI tool, you may have to use prompt. How the prompt should be? You can't just like that ask a question. You can't like that ask, put a question to it. You have to be clear in your wordings. You have to be very clear, precise. Or even if you are writing in details also, it can understand. But it doesn't have emotions. It doesn't understand. It doesn't understand your father, mother, children and all. It doesn't have emotions. It is a trained beast. You remember trained beast, that's all. It can work on the command. It can, if you ask it to slap you on your face, it will slap you. So that is how it works. You must remember that the prompt should be clear, unambiguous. It should be without any ambiguity. The clarity should be there. And the better you, when you are writing a prompt, even if you are writing in detail, it should give, you must give the background. It will understand. That is why I wrote for that image which I showed you for Loco Pilot. I wrote in details, I am writing a cover story on Loco Pilot's flights. The Loco Pilots have the following problems, 1, 2, 3, 4. The pilots are not Loco Pilots. Loco Pilots are engine drivers. The Loco Pilots operating on the express trains are not happy. You must create an image with the engine and with the Loco Pilot's face, a pilot's face with a sad face. Or 2 or 3 times I change it, then I got it. Then it doesn't give you, first time it doesn't give you any result, it gives you something. You can ask, modify it. I will demonstrate before you, and that will be quite an interesting. We can take a copilot first, and then we can also do that. And you can work on that. If you want any doubts also, you can WhatsApp me. This is a prompt, sir. Very, very, very important. Now, I will go for the demonstration also. Can we go for Chat GPT? What you would like to have? First image or text command? Image. How many of you want an image first? Okay. Then in that case, copilot, you take it. What image you want? One of you, please come. One of you, please come to the stage. What image you want? What image you want? Some of you. No, completely say in sentence. Stressful person is a very, very, again, you sell the background also. Stressful person, waiting in a railway station. Okay. You take copilot, type a prompt. Please create an image. Can you, all of you can see on the screen? No, I think it is not, screen is not shown. Screen, can you kindly show the screen? Please create an image of a stressful person who lost his job recently. Full stop. Then we will modify it. Put the command. I think this screen is not coming. Copilot screen is not coming on the. Close the PPT. Minimize the PPT. Minimize the PPT. Can anybody from IT team help? But it's not, that copilot screen is not coming. And on PPT you can close it and take the copilot now. We'll go for... I try to create. One thing is AI is, you must keep waiting. One is, it depends on your... internet speed, and it is also processing background. Now it is slowly coming up. No, don't give. Because it is processing, I think. Okay, you take another, I will go for another prompt, with another, by the time let him to create an image, you go to ChatGPT, there you can ask put a prompt. Prompt is very important. List 5 top colleges in North India which provides mass communication and journalism. Full stop. I am giving a basic prompt. Then I will go for how you can, if you are going to write an article, how to take a outline. I will say you can even write an article. You can write. That book which we have released yesterday, it was. IT. I requested them to log in, both Microsoft as well as Google and ChatGPT also. If you have to log in or create an account, it's not coming up?
Not
now my time is about how to first learn about the artificial intelligence. Now, after learning artificial intelligence only, you will be able to learn spiritual intelligence. Unless you know the artificial, actually I wanted to conclude this, I am here only to explain how the artificial intelligence can be of a great use for a journalist. Then, where the spiritualism comes, only when you know the power of artificial intelligence, the risk of artificial intelligence, ultimately you have to go for a spiritualism. Only spiritualism cannot help, because artificial intelligence, it has, the days have come, because you can't ignore an artificial intelligence. We must be simultaneously both spiritual intelligence as well as artificial intelligence will go together. Because okay, the same question you can put it in Copilot also. Now Copilot, where it is, the image, is it getting created? Gemini also you can open in the Google and you can put the same question. Copilot, you just see that whether the image has come.
Yes, for the first we asked the co-pilot to create a person who has stressful, who lost his job recently. The image you can see, it is completely created by co-pilot.
And this, you want to make any modifications, sir? You want to make any modifications? Again, we can make some modifications. Stressful. Somebody should console, no? Somebody should mentor. Add one spiritual person. Now we will come for the spiritual deal also. Add one spiritual person to console the stressful person. Full stop. Now you see, then it will add. You can even change the attire. So stressful person, we have not given the gender, male or female. What it shows is a male or female?
Male.
You can also, instead of a stressful male, you can make it as a stressful female person. Again, that will add. Say for an example, yesterday before coming, I just wanted to make a try, I wanted to show one demonstration. Asking, please create an image.
A spiritual person is consoling the stressful person. It's also give the next suggestion, make the stressful person's expression change to relief.
Please remember, this is a free tool, copilot.microsoft.com. There is a pro version which is paid. Now, you can add one more, sir, anything, one more, what can be added?
Yes.
Can we add one banner?
Banner.
One banner behind?
Banner behind with Brahma Kumari?
Add a banner behind, within quote, Brahma Kumaris. Brahma space Kumaris. Add a banner behind, within quote and unquote, Brahma space Kumaris. Yesterday I was telling, I tried a classroom, I said, you please create an image with a professor teaching journalism of 10 students. Male professor. I put male professor. Indian male professor. Then it created. Then I changed it. female Indian professor. Then a sari clad professor was teaching. Then I asked the principal, add the principal watching the teaching of the professor. Then it created another figure, male principal with the full suit watching behind. So it is all, you have to, now we may not have a time, the whole 2 hours, 3 hours we can spend on this. It will be tempting. The moment when you sit here, you may not know, on the AA, you will not know that your even time is passing and you may not take even the food. Okay, now how it has come?
It's created with some picture, but it's not completely Brahma Kumaris. They are, the AA is doing some, it's not doing perfectly.
There may be some spelling mistakes also.
Mm.
The Brahma Kumaris, it will cannot understand. Brahma instead Brahma. Again, you have to patiently. You right click it and make it open the image in one of the best images. You open it.
Mm.
You right click and open in a new window or a new tab. You can use that. I wanted to talk about copyright also. There is no copyright so far. Nobody is claiming because it is all you have created. There is no copyright. Plagiarism. Sometimes it brings you the content from different sources. You must be cautious about plagiarism. So the plagiarism check-in, you may have to make it. There are quite a lot of free tools are there, plagiarism check-in. And you can check in whether there is any plagiarism. This is also another risk involved in that. Tomorrow you should not get into a difficulty. For that, one of the suggestions they make it is paraphrase. There are certain tools like Quillbot, Quillbot, Quillbot. You just Google it and see. Quillbot is a very good paraphrasing tool. You can paraphrase it. Even these tools themselves will paraphrase. So what will happen? When you paraphrase, the plagiarism will be going off. There will not be plagiarism. Again, it will be rewritten. So you will not have a problem. That one you have seen, that right click and saw how it has come. Okay. Now you want to, next to one article we will create now. You go to ChatGPT. This will be very useful tool and a prompt. Another 10 minutes. On which article, on which topic you want to write an article?
To write an article on Brahma Kumaris.
I want to write an article on Brahma Kumaris. Please give 5 subtitles or you can make 10. On their origin, activities, spiritual services.
It's giving.
You have added?
Mm. No. It's already creating so many answers in a detailed manner. Yes, the article, ChatGPT article consists introduction to Brahma Kumaris, origins and history, founding principles and philosophy of the Brahma Kumaris, spiritual practices and activities, global presence and outreach of the organization, service to the community, role of women in leadership, influence on society and culture, challenges and controversies, future directions and impact. So automatically it gives so many topics about the Brahma Kumaris.
And you, for a Hindi journalist, I am adding before closure, I will add. Please give the outline in Hindi. Can I have the screen on the... Please give the outline in Hindi.
It's already started in writing.
It is coming?
Yes. It's writing.
How many are from Bengal? Any Bengalis are there? Okay, we will go to the east also. Please give in Bengali. Please give the outline in Bengali. You can use any Indian language.
Yes, now it's writing in Bengali also. As Srinivasan sir said, giving the right question in a precise manner. That is called a prompt. Prompt engineering is now a bigger employment opportunity also. Since I am from a technological university, Anna University, now we are understanding, we are giving the course on prompt engineering. Our students are attending many courses. They are getting very good employment in a bigger company. Okay.
Thank you very much, Brahma Kumari's Media Wing, for the excellent opportunity given. Because we have only 40 minutes time, so I could, whatever basic thing that I wanted to show, I have shown. Those who are interested to know more about that, please note down my WhatsApp number, 91766-50273. 91766-50273. Srinivasan, you can WhatsApp me. I will send you the e-book as well as some more workshop we are conducting through Zoom also from Digital Journalists Association. I will send you the invite so that you can join. Thank you very much, and you can make use of the AI very safely, carefully. Please don't 100% trust on AI. Thank you very much. Om Shanti.
Many, many thanks to Srinivasanji to enrich us with your experienced views on today's subject. Bahut hi khushi ki baat hai. अब वक्त है सम्मान का. उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगी मीडिया विंग के चेयरपर्सन आदरणीय राजयोगी भ्राता करुणा भाई जी को, और सम्मान देंगे विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ भालपुर के उपकुलपति डॉक्टर श्री गोपाल नारसन. आपका भी स्वागत है. नारसन जी द्वारा राजयोगी ब्रह्मा कुमार करुणा भाई जी को वैश्विक सकारात्मक पत्रकारिता का प्रेरक व्यक्तित्व का सम्मान दे रहे हैं. उन्हें आमंत्रित करती हूं, आप कुछ शब्दों में इस सम्मान के बारे में बताएंगे.
ओम शांति. आज हमारा सौभाग्य है कि हम वैश्विक स्तर पर ख्याति लब्ध प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के इस स्पिरिचुअल ज्ञान सरोवर सभागार में उपस्थित हैं. विषय बहुत गंभीर चल रहा था, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. इस पर मैं भी आर्टिकल लिख चुका हूं. लेकिन जो काम दुनिया में ब्रह्मा कुमारी संस्था हिंदी के माध्यम से कर रही है, आप सभी जानते हैं कि जो ईश्वरीय वाणी आती है, मुरली आती है, उसकी मूल भाषा हिंदी है. और इस संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा कहा करते थे कि परमात्मा की वाणी हिंदी है और हिंदी जन्म की भाषा है. चूंकि मैं एक ऐसी संस्था से आता हूं जिसकी स्थापना सन 800 ईस्वी में हुई थी, विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ, जो हिंदी के लिए वैश्विक स्तर पर काम कर रही है. और सन 800 ईस्वी में उस विद्यापीठ में 3000 विद्यार्थी पढ़ते थे. हम लोगों ने बीड़ा उठाया हुआ है कि जो भी व्यक्ति या संस्था वैश्विक स्तर पर, देशीय स्तर पर, राज्य स्तर पर हिंदी के लिए काम करता है, हिंदी को बढ़ावा देता है, उसमें हम जहां सम्मान देते हैं वहीं अकादमिक सम्मान भी है. जिसमें यदि दो पुस्तकें हिंदी में प्रकाशित हों या दो शोधपत्र हों तो उनको विद्या वाचस्पति और उसके बाद विद्यासागर मानद उपाधि प्रदान की जाती है, कुछ अन्य सम्मान है। लेकिन आज हमारा सौभाग्य इस बात का है कि जो हमारे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीश्वरी विश्वविद्यालय के मीडिया विंग के चेयरपर्सन है बीके करुणा भाई, जो मूलतः हिंदी भाषी क्षेत्र से आते हैं, लेकिन हिंदी के लिए इन कॉन्फ्रेंसेज के माध्यम से एक बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं, और उनकी वाक्पटुता देख करके, संवाद देख करके, उनकी भाषा देख करके कहीं नहीं लगता कि ये अहिंदी भाषी क्षेत्र में जन्मे होंगे। तो निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सबसे बड़ा काम बीके करुणा भाई इस यज्ञ के माध्यम से इस पूरी दुनिया में मीडिया बंधुओं को हिंदी के प्रति प्रेरित करने के लिए, हिंदी के प्रति जागृत करने के लिए, और इनमें सकारात्मक पत्रकारिता के साथ मूल्यनिष्ठ पत्रकारिता को बढ़ावा देने का काम आप कर रहे हैं, इसी के लिए आपको आज हम वैश्विक स्तर पर हिंदी के उत्थान के लिए आपको प्रेरक व्यक्तित्व सम्मान के रूप में हमने सम्मानित करने का निर्णय लिया है। और मैं निवेदन करूंगा अपने साथ हमारे उत्तराखंड सूचना विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर मनोज श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, वो भी आए। हमारे भारतीय ब्रह्म सभा रुड़की के अध्यक्ष जिनके सौजन्य से हम ये सम्मान दे रहे हैं, अनिल भारद्वाज जी आप आए, और मंच पर विराजित हैं हमारे दिव्यगिरी हिमगिरी के चीफ एडिटर कुंवर राज अस्थाना जी, वो भी हमारे एक परिवार का सदस्य हैं, हिस्सा हैं। हम सब मिलकर आपको ये सम्मान देकर के हम विभूषित करेंगे, और साथ ही कुंभ के ऊपर एक आस्था विरासत और विज्ञान इस पर एक अद्भुत एक बुक फोटो बुक तैयार हुई थी, जो कुंवर राज अस्थाना जी की मेहनत का फल है, वो भी आपको भेंट करेंगे। तो आज ये एक सुखद घड़ी है, और संपादन जो है इसका वो मनोज श्रीवास्तव जी और कुंवर राज साजी ने किया है, ये हमारे लिए बहुत सुखद है।
आज के विषय पर अपने सुविचार प्रस्तुत करने के लिए अब हमारे साथ हैं मीडिया विंग के नेशनल कोऑर्डिनेटर ब्रह्मा कुमार निकुंज भाई जी। आप एक राइटर कॉलमनिस्ट हैं, करीब 8000 से भी अधिक आर्टिकल्स आपके देश विदेश के प्रमुख मैगजीन्स अखबारों में प्रकाशित हुए हैं। आपको वर्ल्ड पीस मैसेंजर से सम्मानित किया गया है, राइटर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है, मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन इन मेंटल हेल्थ, और ब्रह्मा कुमारीज के ICICI द्वारा गठित संगठन ग्लोबल इंटरैक्टिव मीडिया में भी आप अपनी अमूल्य सेवाएं दे रहे हैं। आमंत्रित करती हूं निकुंज भाई।
नमस्कार, ओम शांति। सर ने काफी विस्तृत जानकारी तो दे ही दी है, तो मुझे याद आ रहा था कि आज से 10 वर्ष पूर्व मैंने एक कॉलम लिखा था जिसका टाइटल था व्हाट इज योर SQ, व्हाट इज योर स्पिरिचुअल क्वोशंट। उसमें 3 बिंदुओं के ऊपर मैंने लिखा था 10 वर्ष पूर्व, IQ, EQ और SQ। तो अमूमन हम बचपन में देखते थे, वो जो बच्चों का पूछते थे भाई इसका IQ कितना है, इसका कितना IQ है, मतलब इसकी बुद्धि प्रतिभा कितनी है। धीरे 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 ज्यो ज्यो समय बीतता गया, उसके बाद EQ नाम से एक चीज आ गई, इमोशनल क्वोशंट। भाई केवल इंटेलिजेंट होना उससे काम नहीं बनता है, परंतु आपके अंदर कुछ भावना भी होनी चाहिए, कुछ भाव भी होना चाहिए, वो भी आया। पर कुछ समय बाद लोगों को लगा नहीं, ज्यादा भाव में इंसान अगर बह जाए तो इसको पता नहीं चलेगा कौन इसका फायदा ले लेता है, गैर लाभ ले लेता है। तो उसके लिए फिर एसक्यू नामक एक चीज डिफाइन की गई, स्पिरिचुअल क्वोशन, अर्थात किसी भी चीज की मापदंड करने के लिए या कोई भी कार्य को करने के लिए मुझे किस में कितना अंदर डूबना है या किस हद तक जाना है, ये जो समझ जिसको हम कहते हैं, संवेदना कहते हैं, तो ये आध्यात्मिक, साधारण भाषा में इसको हिंदी में यदि समझाने जाए, भागफल कहो, गुणांक कहो, परंतु कुछ समय से इसकी बहुत मांग कॉरपोरेट जगत में भी बढ़ गई है। नहीं, एसक्यू लेवल होना चाहिए, जो भी हमारे कंपनी में काम करने वाले लोग हैं उनके अंदर कुछ तो एसक्यू का एक परसेंटेज होना चाहिए। अब जिस विषय को लेकर के ये सब बात चल रही है, एआई, आप देखिए, यदि साधारण भाषा में भी हम लोग यदि एक शब्द हमारे कानों में पड़ता आर्टिफिशियल, थोड़ा हम कहीं कोई चीज लेने जाते हो, हमने सुना था आर्टिफिशियल डायमंड, नहीं नहीं हमको ओरिजिनल चाहिए, है ना, ये सब जो माता है बहनें जो बैठी, बराबर है ना, भाई ओरिजिनल डायमंड, आर्टिफिशियल नहीं चाहिए। तो आर्टिफिशियल शब्द जो ही कानों में पड़ता है तो थोड़ा लोगों को लगता है ये तो मतलब ये नकली होगा, डुप्लीकेट होगा। अर्थात मैं समझता हूं जो एआई की बात हो रही है उसको मैं आर्टिफिशियल न कहते हुए मैं कहूंगा असिस्टेड, आप उसको कह सकते हैं, जैसे सर ने कहा कि भाई आपका सेक्रेटरी है, आपका पीए है, आपका टाइपिस्ट है, वगैरह वगैरह। अब ये जो सारी द्वंद्व है ये दो शब्द और भाव के बीच में, देखिए मैं हमेशा कहता हूं कि समस्त संसार दो चीजों पे चलता है, वो है भाव और भावना। तो भाव और भावना के आधार पे सब कारोबार संसार का चलता है, कोई भी आप क्षेत्र देख लो। तो ये जो द्वंद्व है एआई और ये एसआई, ये कैसे और क्यों, इसके बीच का द्वंद्व है। आपको फलाना फलाना चीज जैसे इन्होंने बताया, एक कैसे ये लिख के बताइए, ये करके बताइए, ऐसा है तो इसकी इमेज निकाल के दिखाइए, वो सब आपको बताएगा। परंतु यदि आप उसमें लिखो मैंने मेरी माताजी के साथ थोड़ा दुर्व्यवहार किया, उनका अपमान किया, वो दुखी होगी, अभी मैं क्या करूं, उसको आप पूछो, उसकी जवाब नहीं है, उसका जवाब यहां है। तो बुद्धि और हृदय दोनों जरूरी है, परंतु दोनों का उपयोग कितना, कैसे, कब, कहां, किसके सामने करना है, उसके लिए फिर ज्यादा नहीं परंतु थोड़ा सा आध्यात्मिकता की समझ जरूरी है। मानते हैं आप सभी? अभी मानते हैं तो ऐसे हाथ खड़ा करेंगे, मानते हैं, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। अर्थात मान लीजिए आपने किसी को दुख दे दिया तो अब उसका क्या करें आप, इसमें डालेंगे जब ये जो मूलतः जीपीटी का फुल फॉर्म क्या है, कोई जानता है क्या? यहां जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफॉर्मर इसको कहते हैं। इसको ट्रेन किया गया है कि ढांचा है, इसको आप कह सकते हैं साधारण भाषा में, जिसमें करोड़ों खरबों की मात्रा में डेटा डंप किया गया है ताकि आप जो भी पूछो चुटकी में जो आपको जवाब दे देगा, पर भाव नहीं है उसके अंदर, क्योंकि किसी मनुष्य ने उसके अंदर वो डाला है। अर्थात भाव और भावना के बिना आप जो करेंगे काम आ जाएगा, खराब नहीं है। पिछले वर्ष इसी मंच पर बात चली थी, ये सोशल मीडिया इसको करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए, ऐसी दुनिया में कोई चीज नहीं जो नहीं करना है, पर कितना कैसे, उसमें मेरा कितना फायदा है, अन्यों का कितना नुकसान है, ये समझ होनी चाहिए। तो मशीन जो है मूलतः टेक्नोलॉजी हम कहते हैं मैन मेड है, मनुष्य ने बनाया हुई, अर्थात रचना जो है किसी रचता ने बनाई है, रचना रचता के अधीन होनी चाहिए, न कि रचता रचना के अधीन होना चाहिए। तो समस्या वो हो जाती है जब से एआई बना है, तो शुरुआत जब हुई थी तब ऐसा हुआ था कि लोगों को कहा जाता था अरे तुम्हारा बिजली का कनेक्शन कट गया या ज्यादा बिल आया तो उसका एप्लीकेशन करना तो उसमें डाल देना वो बिजली अधिकारी को, तो आपको एप्लीकेशन पूरा लिख के दे देंगे बरोबर। ये शुरुआत ऐसे हुई, फिर धीरे धीरे भाई निबंध लिखना है, पत्र लिखना है वगैरह वगैरह वगैरह, बहुत अच्छी बात है। परंतु आप यदि देखो जो GPT यूज करते होंगे उसमें एक बार उसने जनरेट करके दिया, उसमें नीचे वो होता है आपको मजा नहीं आया रीजनरेट, वो तत्त वापस सारा आपको डाल, अच्छा मजा नहीं आया फिर वापस, ऐसा आप 6 बार 8 बार करेंगे ना तो पहली बार वाला वापस रिपीट। तो इसकी भी लिमिटेशन है। तो मनुष्य की बुद्धि प्रतिभा उसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, हम चाहे उतना सोच सकते हैं, हम चाहे वहां तक पहुंच सकते हैं, मशीन का लिमिटेशन है। तो इसीलिए मैं यही कहूंगा कि AI एक प्रकार से वरदान है। किस लिए? यदि आप कोई चीज की अर्जेंसी में है, आपको तात्कालिक कोई ऐसी चीज लिखनी है, आप झट से उसमें डाल दीजिए, परंतु उसको आप ब्लाइंडली उठा करके कॉपी पेस्ट कर देंगे तो वो भाव नहीं आएगा। तो इसीलिए कहा आर्टिफिशियल न होके असिस्टेड है ये, आप मदद ले लो परंतु अपना भी कुछ भाव डालो उसके अंदर, ताकि उसकी ओरिजिनलिटी कुछ तो लगे। अन्यथा कुछ समय में क्लास में बच्चों को कहा जाएगा हाँ भाई माँ के ऊपर निबंध लिख के आओ, सारे का निबंध सेम होएगा, ऐसे नहीं होता है। तो हम कहते हैं कि संसार में भाव और भावना बनी रहे, उसके साथ साथ बच्चे विशेष करके उनके अंदर समझ शक्ति आए, उनके अंदर समझ शक्ति का विकास हो, परंतु नैसर्गिक कृत्रिम नहीं। तो सब कुछ करिए परंतु बैलेंस रख करके करिए, कितना करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके सामने करना है, तो सब अच्छा है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
विशेष धन्यवाद निकुंज भाई जी का। नाउ आई रिक्वेस्ट अवर गेस्ट डॉक्टर सारिका ताखर, PhD in Journalism and Mass Communication, is an accomplished media professional and passionate educationist with extensive experience of electronic media, stage management, anchoring, presentation skills, and personality development and leadership skills. She holds many prestigious awards like the Durga 2023 Award, Dr. Sarojini Naidu International Award, Narad Citizen Journalist Award, Rashtriya Gaurav Award, Kalam Ke Sipahi Award, Kalam Ke Sipahi Award, and Global Leadership Best Media Educator ICI Award, Best Appreciation Award, ऐसे कई अवार्ड से सम्मानित किया गया है डॉक्टर सारिका को। हर डेडिकेशन एंड एक्सलेंस हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड ग्लोबली विथ मेनी अवार्ड्स एंड शी हैज कोऑर्डिनेटेड प्रेस्टिजियस इवेंट्स एज प्रोग्राम इंचार्ज लाइक द इंटरनेशनल वुमेन्स समिट। शी इज एन अकम्प्लिश्ड एकेडमिशियन विद न्यूमरस पब्लिकेशंस एंड पेटेंट्स टू हर क्रेडिट। डॉक्टर सारिका कंटिन्यूज टू इंस्पायर थ्रू हर कॉन्ट्रीब्यूशंस to academy, media, and social service. I now request her to express her valuable views on today's subject.
सर्वप्रथम इस सभागार में मौजूद मंच पर आसीन प्रोफेसर के श्रीनिवासन जी, बीके निकुंज भाई जी, डॉक्टर सोमनाथ जी, कुंवर राज अस्थाना जी, सिस्टर बीके चंद्रकला जी को मेरा प्रणाम है और मेरे समक्ष बैठे सभी बंधुजन, मीडिया पत्रकार बंधुजन और बहनों को मेरा प्रणाम है। आज इस खास मौके पर हम एक साथ मीडिया कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हुए हैं। ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है कि आज इस दिन को हम साक्षात इस रूप में ले रहे हैं कि स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कितना फर्क है और हमारी जिंदगी में आमतौर पर दैनिक दिनचर्या में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या चीज रखती है। आज माउंट आबू ब्रह्म कुमारीज में मेरा आना पहली बार हुआ है और यकीन मानिए ऐसा अनुभव आज मैंने यहां इस मंच से, इस प्रांगण से लिया है। बिल्कुल स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दोनों का फर्क साक्षात एकदम स्पष्ट हो गया है और आज वही जो अंतर मैंने यहां अनुभव किया है आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रही हूं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगी कि महिलाओं द्वारा चलाई जाने वाली विश्व में सबसे बड़ी आध्यात्मिक संस्था है ब्रह्म कुमारीज, मानवता के लिए सशक्त मार्गदर्शक है। इस संस्था के संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा ने सभी माताओं और बहनों को शुरू से ही आगे रखकर पूरे विश्व को एक संदेश दिया है। शुचिता का सबसे बड़ा विशुद्ध रूप ब्रह्म कुमारी संस्थान ने आकर हम सबको दिखाई दिया है। यहां केवल वस्त्र श्वेत ही नहीं है बल्कि आत्मा भी उतनी पवित्र है और उस पवित्रता को हम यहां मंच से इस प्रांगण में महसूस कर सकते हैं। इस संसारिक ताप के दौर में जो शीतलता आत्मा को चाहिए वो शीतलता हमें यहां ब्रह्म कुमारी के प्रांगण में मिलती है। अध्यात्म का अर्थ है आत्मा का अध्ययन और हम सब मीडिया बंधु यहां पे अपनी आत्मा का अध्ययन करने के लिए मौजूद हुए हैं और यह अध्ययन इससे बेहतर किसी और जगह नहीं हो सकता क्योंकि चंदन सी शुचिता और सुगंधि में हमेशा से अपने अस्तित्व को समाहित करने की इच्छा हमें बाबा शिव बाबा की ओर सदैव आकर्षित करती है। अब आते हैं हम अपने इस आज का जो हमारा टॉपिक है स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो सर्वप्रथम मैं हमारे जितने भी बंधुजन यहां बैठे हैं सिर्फ एक साथ अपना हाथ खड़ा करके बताइएगा कि आप में से कितने लोग अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई यूज कर रहे हैं। हाथ सीधे तौर पर खड़े किए जाएं ताकि पूरा रेशियो हमारे सामने हो। जी, रेशियो अभी हमारे सामने जितना है वो कम दिखाई दे रहा है लेकिन अगर हम ये चीज युवा जो हमारे युवा साथी हैं या कॉलेज स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, मीडिया के विद्यार्थी हैं, इसका प्रयोग एआई का प्रयोग बहुत ज्यादा मात्रा में हो रहा है। अगर एप्लीकेशन लिखना है या कोई भी चीज हम शुरुआत करना चाहते हैं, कविता लिखनी है या कुछ भी लिखना है तो आमतौर पर एक विद्यार्थी मीडिया कर्मी सबसे पहले एआई पर चैट कर रहा है और उसका क्या रिजल्ट आता है वो देख रहा है। लेकिन सबसे ज्यादा सोच जो विषय की बात है क्या हमें एआई वो चीज दे पा रहा है जो हमें बुद्धि और दिल से सोचकर लिखनी चाहिए। जैसा कि अभी निकुंज भाई जी ने भी अपनी स्पीच के दौरान कहा कि हम जब कोई भी फैसला करते हैं तो उसे बुद्धि, विवेक और दिल से उसको लिखने के लिए एआई आपकी मदद नहीं कर सकता। आपने एक उदाहरण भी दिया था कि अगर माँ के साथ आपने बुरा बर्ताव किया और फिर आपको बहुत अंदर से गिल्ट महसूस किया कि ऊंचा तो बोल गए लेकिन गलत बोले, अब कैसे उसकी माफी मांगे, दिल तो दुखा दिया, क्या एआई आपको बता पाएगा? वो आपको बताएगा यू शुड से सॉरी टू योर मदर, पर किस फीलिंग के साथ बोलना है, किस इंटेंसिटी के साथ बोलना है, आपका भाव क्या रहेगा, आप घुटनों पर बैठ के बोलेंगे या सर को उठाकर बोलेंगे, ये चीज कहां से आएंगी, करुणा के किस लेवल पर आपको जाके बोलना है, ये चीजें आपको सिखाएगा आध्यात्मिक अध्ययन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की अगर मैं बात करूं तो चार वेद, 18 पुराण, 6 शास्त्र और 108 उपनिषद, आप ये भी पढ़ लेंगे तो आपके सामने जो फिगर आएगा, जो आपके सामने एक सार निकल कर आएगा, एक तो कर्म प्रधान, कर्म प्रधानता और उसके बाद आपका भाव, भगवान को केवल भाव प्रिय है। तो क्या ये भाव हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मिल रहा है? कतई नहीं। ठीक है, प्रगति के साथ, तकनीक के साथ आगे बढ़ना जरूरी है, लेकिन अपने भाव को छोड़ते हुए, अपने संस्कारों को छोड़ते हुए, आप क्या सोच रहे हैं आने वाले भविष्य के लिए, हम उस तेजी से आगे नहीं बढ़ सकते। प्रगति केवल तभी तक आपको भाएगी जब तक वो संस्कारवान हो और आपके दायरे में और आपकी भावनाओं को समझती हो। एक उदाहरण के तौर पर आपके सामने मैं प्रस्तुत करना चाहूंगी, हमारे जितने भी मीडिया कर्मी बंधुजन हैं, बहनें काम कर रही हैं, जब भी आप एक स्टोरी को कवर करने निकलती हैं, सेंसिटिव इश्यूज हैं, कहीं मृत्यु का तांडव होता है तो कहीं बाढ़, अकाल, कहीं सुनामी की लहरें होती हैं, जब उस झकाझोर उस दृश्य के अंदर आपको छोड़ दिया जाता है कि जाइए और रिपोर्टिंग कीजिए, क्या उस वक्त आपका ये मोबाइल फोन खुलेगा? तब क्या आप AI के लिए चैट करके देखेंगे कि क्या इसमें कैसे टॉपिक कवर करना चाहिए? कोई बताएगा मुझे, क्या आप फोन पर AI उसको गूगल करेंगे या फिर आप अपने दिमाग और अपने दिल से एक फैसला लेंगे ऑन द स्पॉट, जिसे कहा जाता है डिसीजन पावर? इन दोनों में से आप कौन सा रास्ता अपनाएंगे, कोई भी बताइए प्लीज। जी, आप अपने दिल की आवाज सुनेंगे, आपका दिल, दिमाग, करुणा, विवेक और आपका चिंतन क्या कहता है, और आप उसी के जरिए आप पूरा फैसला लेते हैं, चाहे बात पावर, पॉलिटिक्स, पैसा कमाने की हो, आप सबसे ज्यादा दिल और दिमाग की सुनते हैं। तो यही बात है ब्रह्म कुमारीज में आने के बाद, जो चीज आप यहां से सीख कर जाने वाले हैं इस मीडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस में, कि आप एक अच्छे पत्रकार कैसे बने, आप एक अच्छे मीडिया कर्मी कैसे बने, एक राष्ट्रीय पत्रकार जो देश और दुनिया की तस्वीर बदल दे, किसके बलबूते? अध्यात्म चिंतन के बलबूते, अध्यात्म इंटेलिजेंस के बलबूते। इसमें कोई शक नहीं है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी सीखेंगे, नई तकनीक का भी प्रयोग करेंगे, विश्व के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, लेकिन शर्त केवल यह होगी कि हम उस भारत से ताल्लुक रखते हैं जो सोने की चिड़िया हुआ और वसुदेव कुटुंबकम का विजन लेकर और इस आदर्श के ऊपर हम लेकर चल रहे हैं। तो वसुदेव कुटुंबकम की धारणा को भी धारणा है, अध्यात्म में आत्मा का चिंतन भी करना है, और एक वर्ड है सिंपैथी, सद्भावना हम सब समझते हैं, एक वर्ड है इंपैथी, कि आप जब दूसरे के स्थान पर खड़े होकर उसको महसूस करते हैं कि अगर उसके स्थान पर मैं होता तो कैसा लगता, या उसके स्थान पर मैं होती तो कैसा लगता। एक बूढ़ी माँ जिसका बेटा शहीद हो गया हो और एक ही बेटा उसने देश पर न्योछावर कर दिया, आपको स्टोरी कवर करनी है। एक अच्छा पत्रकार उस टाइम पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज नहीं करेगा, वो यूज करेगा अध्यात्म चिंतन, आत्मा का चिंतन से, कि अगर तुम्हारी माँ हो, अगर तुम उस माँ की जगह खड़े हो तो आपकी भावनाएं कैसी होंगी, उस कलेजे पर क्या उतरेगा, उस आंचल में जिसने उसे दूध पिलाया, उस पूत को बड़ा करके सरहद पे खड़ा किया, राष्ट्र के प्रति समर्पित किया, वो भावनाएं आपको देश के प्रति समर्पित, राष्ट्रीयता के प्रति समर्पित रहते हैं कि कैसे हम आगे बढ़े, तो वो भावनाएं लिखने से ही आएंगी, समझने से आएंगी। और कभी भी बड़े व्यक्तित्व हम बनेंगे, सभी आगे प्रगति भी करेंगे, लेकिन जब आप एक गरीब की टोकरी देखते हैं और जब आप एक मॉल की एक दुकान देखते हैं तो वहां पर हम मोल भाव भी करते हैं, बहुत सी चीजें करते हैं, लेकिन एक गरीब के भाव को देखिए कि साहब 10 रुपए किलो आलू है, ले लीजिए, अगर आपको नहीं भी खरीदना तो चलेगा, लेकिन हमें भाव का आदर करना है कि एक गरीब है, कम से कम वो कमा कर खा रहा है और देश के लिए सम्मान कर रहा है, चोरी डकैती नहीं कर रहा है। तो ये आत्मा का चिंतन कहां से आएगा, ये हमें सिखा रहा है ब्रह्म कुमारी मीडिया सेंटर, आज इस कॉन्फ्रेंस से हम सीख रहे हैं। वास्तव में जितने भी बंधुजनों से मैं आज मिली, ये मेरे पर्सनल अनुभव जो मैंने रात से मैं यहां अनुभव कर रही हूं, इतना कॉपरेशन, तो मतलब पहला जो कदम है वो ही आपको धीरे धीरे प्रेरित करता है आध्यात्मिक चिंतन के लिए, आपका स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है यहीं से शुरू हो जाता है। अब बात करूंगी कुछ छोटी सी 4-5 चीजें हैं, अगर हम वो धारण कर लेते हैं जीवन में तो शायद कुछ और बेहतर प्रयास कर सकते हैं। आज का ही न्यूज़पेपर है, राजस्थान पत्रिका की फ्रंट पेज न्यूज थी कि IIT जैसे संस्थान जहां पर बड़े बड़े सॉफ्ट इंजीनियर्स जो मतलब पूरी दुनिया का काया पलट कर देते हैं, उस संस्थान में भी 38% की कमी आई है। गौर कीजिएगा, 38% अगर प्लेसमेंट में कमी आ रही है तो भारत का भविष्य सोचने पे मजबूर होना होगा। क्यों? क्योंकि AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हमारी भावनाओं का स्पेस ले लिया। कैसे ले लिया, क्यों ले लिया? हम हैं जिम्मेदार। हमने तकनीक को अपने अंदर आने दिया, लेकिन तकनीक के साथ साथ क्या हम उसमें भाव ले पाए? हमने अपने भावों को बंद कर दिया। हमारे पास सिनेमा है, हमारे पास OTT प्लेटफॉर्म है, बॉलीवुड मूवीज बन रही है, टॉलीवुड मूवीज बन रही है, हॉलीवुड तो काम कर ही रहा है, लेकिन भावनाओं के स्तर में क्या गिरावट आई है, कोई मुझे बता पाएगा? अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हैं, बहुत से डीप फेक वीडियोस, जैसे पिछले दिनों बहुत से पॉलिटिशियंस का, जैसे अमित शाह का जी का भी डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था, तो और भी बहुत सारे सिनेमा के जो कलाकार हैं उनके साथ आर्टिफिशियल AI का प्रयोग करके बहुत सी ऐसी वीडियोस वायरल की कर दी जाती हैं, और उनका प्रभाव कहीं ना कहीं हमारे घरों में भी पड़ता है, हमारे बच्चों पर, हमारे संतानों पर, हमारे घर के सदस्यों के मानसिक पटल पर पड़ता है। आपके घर में जो गृहिणी है, जो खाना बना रही है, बनाते बनाते जो चीज वो देख रही है, वो भाव, वो चीज आपकी थाली में परोसे जा रहे हैं। तो भावों का जो इंपॉर्टेंस है, नो डाउट उसको नकारा नहीं जा सकता। अगर प्रोफेशनल तौर पर देखें, किसी भी व्यक्ति को अपने क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक रूप से भी उतना ही प्रयत्न करना होगा जितना वो प्रोफेशनली प्रयत्न करता है। जी, अब समय सीमा भी मैं समझ पा रही हूं, अंतिम शब्दों में अपनी बात को सार गर्भित करूंगी। जो सबसे पहली हमारी ताकत है कि स्वयं की ताकत पर आप भरोसा करें। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगी, मात्र 2 मिनट में और एक्स्ट्रा लेना चाहूंगी, कि एक इंसान है जिसे चला नहीं जा रहा, आप क्या करते हैं, लकड़ी का सहारा लेते हैं और आप लकड़ी के सहारे अच्छे से चल पाते हैं, लेकिन जब आप बिल्कुल ठीक हो जाते हैं फिर भी आप उस लकड़ी का सहारा लेते हैं। ठीक इसी प्रकार AI है, जब आपका कोई भी पॉइंट नहीं चल रहा है तो आप AI का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप फिर करते ही जाते हैं, आप उसके गुलाम और एडिक्टेड हो जाते हैं। तो आपसे निवेदन ये है कि आप उस लकड़ी का सहारा लें जब आपको जरूरत हो, जब आप सक्षम हो जाए, आप में ताकत आ जाए, तो आप वो लकड़ी छोड़ दें। आपके पास भगवान के दिए 9 रथ हैं जो नाट्य शास्त्र में लिखे हैं, आप उसका इस्तेमाल करें। और इसी के साथ आपके साथ करुणा, आत्मज्ञान, विवेक, ध्यान और स्वयं की ताकत पर भरोसा करें। अगर इन चीजों को आप अपने जीवन में उतारेंगे तो आप आध्यात्मिक चिंतन भी अच्छे से कर पाएंगे, आपकी आत्मा का अध्ययन भी आप कर पाएंगे। और आज वाकई बहुत ही सौभाग्यशाली दिन है, और इन्हीं शब्दों कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को मैं यही विराम देना चाहूंगी कि अगर हमने आध्यात्मिक चिंतन नहीं किया तो हम देखेंगे कि नीले नीले आसमान पे अंगारों के फूल खिलेंगे, क्या होगा मासूम बहारों का कलियां खा जाएंगी, डसलेगा काला नाग रात की रानी को, फिर कहां कोयल की कूक, आम की लचक, जाम की झनक, नाचती धनक धनक, फिर रंग भरा संसार कहां हम देखेंगे, फिर मधुर सलोना प्यार कहां हम देखेंगे। जय हिंद, जय भारत। अंतर्मन से विशेष धन्यवाद डॉक्टर सारिका जी। स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के समन्वय से बनता बेहतर समाज है, मूल्यनिष्ठ मीडिया पर हम सबको नाज है। अब मैं आमंत्रित करती हूँ महाराष्ट्र जलगांव उत्तर महाराष्ट्र विश्वविद्यालय के जनसंचार और पत्रकारिता विभाग के विजिटिंग प्रोफेसर डॉक्टर सोमनाथ वडनरे। आपने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है मास्टर ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में, मीडिया विंग ब्रह्म कुमारीज के आप संचालित मीडिया सर्विस सेंटर नॉर्थ महाराष्ट्र के कोऑर्डिनेटर हैं, क्षेत्रीय समन्वयक हैं, आप प्रधान संपादक हैं ब्रह्म कुमारीज के प्रथम हिंदी वेब पोर्टल bkvarta.com, आपको 3 इंटरनेशनल और 7 नेशनल पेपर्स मीडिया के प्रमुख शोध पत्रिका में प्रकाशित किए गए हैं आपके रिसर्च पेपर्स। आप ब्रह्म कुमारी से बाल्यकाल से ही जुड़े हुए हैं, पूरा परिवार इस
ईश्वरीय सेवाओं में समर्पित है। मूल्यनिष्ठ मीडिया हेतु जलगांव उपक्षेत्र तथा महाराष्ट्र में कई मीडिया कर्मियों में मूल्यों की धारणा के लिए आप प्रयास करते रहते हैं। ऐसे डॉक्टर सोमनाथ जी से अनुरोध करती हूँ कि आज के विषय पर अपने सुविचारों से हमें अवगत कराएं।
ओम शांति। सभी बोलेंगे ओम शांति। बुद्धिवानों के बुद्धिदाता परमपिता शिव परमात्मा, मीडिया विंग के इस प्लानरी सेशन 2 में मेरे पूर्व जिन्होंने बहुत ही अभ्यासपूर्ण वक्तव्य पेश किया, ऐसे ब्रदर के श्रीवानसन जी, चेयरमैन प्राइम पॉइंट फाउंडेशन चेन्नई, जिनके ओजस्वी वाणी से अब अभी अब लाभान्वित हुए हैं, ऐसे हमारे मीठे मीठे राजयोगी आदरणीय ब्रह्म कुमार निकुंज भाई जी, जो नेशनल कोऑर्डिनेटर ऑफ मीडिया विंग है, मुंबई से पधारे हैं, जिन्होंने हिंदी वाणी में बहुत ही सुंदर रीति से अभी प्रेजेंटेशन किया, हमारी बहन डॉक्टर सारिका जी, और मेरे बाद में बोलने वाले मेरे ब्रदर कुंवर राज अस्थाना जी, जो सीनियर जर्नलिस्ट देहरादून से हैं, जिन्होंने कुशल मंच संचालन अब तक किया है, ऐसी हमारी मीठी बहन बीके चंदा जी, और अभी इंस्पायरेशन करने वाले चंद्रकला दीदी जी। मेरे सामने हमारे मीडिया के गुरु और संजय की कलम से इस नाम से लिखने वाले हमारे आदरणीय प्रोफेसर संजय द्विवेदी जी, जो मूलानगत मीडिया के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, और हमारी मीडिया विंग का जो मकसद है टुवर्ड्स दी वैल्यूएबल सोसाइटी फॉर मीडिया, और मीडिया के लिए बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सेवाएं दी है, श्री गोपाल नासन जी, जिन्होंने अभी ही विक्रमशील विश्वविद्यालय के तौर से सम्मानित किया भ्राता करुणा भाई जी को, और हमारे एडवोकेट और अभी डॉक्टर बनने वाले राजेश राजौरी भाई जी। भाई और बहनों, आज विषय जो है बहुत ही अच्छा है, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस वर्सेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। थोड़ा सुधार करना चाहूंगा, चंदा बहन ने भी उस बात को जिक्र किया, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का समन्वय आर्टिफिशियल बुद्धिमत्ता से होना चाहिए। वर्सेस का मतलब बहुत ही दूर की बात होंगी, क्योंकि हम जानते हैं कि विज्ञान के जो भी इन्वेंशन निकले हैं मानव समाज के शांति प्रेम सद्भावना के लिए निकले हैं, और AI भी जो निकला है वो मानव समाज के अच्छाई के लिए निकला है। इसलिए मैं बनाम नहीं कहूंगा, लेकिन समन्वय किस प्रकार से होना चाहिए उस बात पर मैं प्रकाश डालूंगा, और बहुत ही टॉपिक पर मैं बोलने वाला हूं, इसलिए आप जो बातें समझते हो उसके ऊपर मैं प्रकाश नहीं डालूंगा। पूर्व वक्ताओं ने जिस बात को छेड़ा है उस पर भी नहीं बोलूंगा, जो मिसिंग डायमेंशन है उसके ऊपर मैं चर्चा करने वाला हूं। AI जो अभी बहुत ही लोग बोल रहे AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और एक जगह पे मुझे कृत्रिम बुद्धिमत्ता की जगह पे कृत्रिम होशियारी शब्द नजर आया, होशियारी, कृत्रिम होशियारी। तो इसका सबसे पहले जनक जो है वो है जॉन मैकार्थी, 1927 में सबसे पहले उन्होंने आगाज किया AI का। बहुत ही रफ आइडिया थी उनके पास AI की, लेकिन बहुत रैपिडली वो ग्रो हुआ, 50 में उसकी पहचान मिली, और 70 से 81 तक कंप्यूटर की 5th जनरेशन जो थी उसमें कुछ बातें AI की निकाली गई। आप सभी को पता है कि 92 या 90 में इंटरनेट की इन्वेंशन की गई, उसके बाद में AI जो है कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रैपिडली ग्रो हुआ। हम मानव समाज हमेशा जो बातें वास्तव में नहीं होती है उसके लिए सोचता है। पहला जमाना था कि क्या सचमुच हम आकाश में आसमान उड़ पाएंगे, और जॉन एडिसन ने फिर उसका इन्वेंशन किया, एरोप्लान किया। उसी प्रकार क्या मशीनें विचार कर सकेंगी, इस बात पर चिंतन करना शुरू हुआ, और वही समय था कि जो AI हम जो बोलते हैं अभी कृत्रिम बुद्धिमत्ता, वो धीरे धीरे रैपिडली ग्रो होगी, और 2018 के बाद उसमें बहुत बदलाव आए, और भविष्य का आगाज ऐसा है 2045 का जो भविष्यवाणी है वो भी हमारे सामने आ गई है, उसमें ऐसा होने वाला है कि मशीनें आपस में बैठकर विचार करेंगी। क्या करेंगे? जब हम ह्यूमन आपस में बैठ के विचार करते हैं तो 2045 में निकुंज भाई जी मशीनें आपस में बैठ के विचार करेंगी कि मानव समाज हमारे पर हावी हो रहा है, ऐसी मशीनें सोचेंगी। बहुत ही ये रिसर्च है, रिसर्च हुआ इसके ऊपर और आगे चल के द्विवेदी सर बहुत ही चिंतनीय विषय है कि मशीनें स्वयं सीखेंगी और स्वयं को सुधारने में सक्षम होगी, स्वयं को सुधारने में। बहुत डेंजर बात है मनुष्य के लिए, ये बहुत ही इंसान का खतरे में मोड़ डालने वाली है। सुरक्षा व्यवस्था, प्रशासनिक व्यवस्था, सभी जगह AI जो है वो आगे चल के काम में आने वाला है। और 80 जो बिल गेट्स जो है हमारे माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक, उन्होंने एक चेतावनी दी है कि ऐसी बात जब आएंगी तो डेफिनेटली मानव समाज जो है वो उनका अपनी जो गरिमा धीरे धीरे खोने लगेगा। तो यहां तक हमने देखा कि किस प्रकार से AI का ग्रोथ हो रहा है, भविष्य में AI क्या करने वाला है। कुछ चौंकाने वाली घटनाएं अभी AI के बारे में मैं जो रिसर्च हुआ है वो आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। 1997 में सबसे पहली जो बात चौंकाने वाली थी कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या कर सकती है, गैरी कास्परोव रशिया के बहुत अच्छे शतरंज के महान खिलाड़ी है, उनको सुपर कंप्यूटर ने हरा दिया। तब सब लोगों की आंखें चौंक गई कि इतना बड़ा बुद्धिमान गैरी कास्परोव उसको सुपर कंप्यूटर ने हरा दिया। तब वही बात AI के भविष्य में जो गुजने वाली थी बातें, तो वहां पे आगाज होगा कि AI क्या कर सकता है। हाल ही में बहन सारिका ने जो जिस बात का डिफेक्ट वीडियो का जिक्र किया, बहन रश्मि का जो है अभिनेत्री है, उन्होंने उनका वीडियो डिफेक्ट वीडियो रैपिडली ग्रो हुआ और बहुत ही उनको दर्द हुआ। यहां तक जो हमारे अमिताभ बच्चन जी है उन्होंने भी कहा कि ये बातें बहुत ही निंदनीय है और सभी बॉलीवुड हॉलीवुड स्टारों ने इसका खंडन किया कि ये बात होनी नहीं चाहिए। हालांकि AI क्या कर नहीं कर सकता, इसकी और लास्ट में एक लास्ट का जो बात मैं दोहराने जा रहा हूं कि एक जगह पे मना सऊदी अरब में एक शो हो रहा था मीडिया का, और वहां पे सबसे पहला सऊदी अरब का जो कृत्रिम रोबोट है जिसका नाम था एंड्रॉइड मोहम्मद, वो वहां पे खड़ा था और जो एंकर थी एंकर को उन्होंने छेड़ा था। देखो भाई और बहनों सज्जनों, एंकर को उन्होंने छेड़ा था, तब कैमरे में भी ये बात कैद हुई कि ऐसी बदतमीजी रोबोट ने उस महिला एंकर के साथ की थी। मार्च 2024 की बात है, क्या नहीं कर सकता था रोबोट और क्या होगा आगे चल के, इसका आगाज इन घटनाओं के से हम देख सकते हैं। निगेटिव बातें तो बहुत हो गई है, लेकिन AI के कुछ पॉजिटिव बातें भी हैं जो हम देखेंगे आगे चल के। आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जिसका जिक्र बहुत वक्ताओं ने किया, मैं समझता हूं 1997 में सबसे पहले आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता विषय पर एक रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ था निकुंज भाई जी, जो दानाह जोहर ने अपनी रिसर्च रिवायरिंग द कॉर्पोरेट ब्रेन में परिभाषित किया। केवल ब्रह्म कुमार जी परिभाषित नहीं करती है बल्कि दुनिया में भी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जो है वो परिभाषित की गई दाना ने। उन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंस के प्रवर्तक हॉरो गॉर्नर के हिसाब से आस्तिकवादी बुद्धिमत्ता डेफिनेशन को आगे चल के उसमें सुधार किया। तो इस बात पे मैं कहूंगा कि आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में क्या अंतर है और क्या समन्वय हो सकता है, ये बातों पर मैं अभी आगे चल के मेरा मंतव्य पेश करूंगा। सबसे पहले तो श्रीनिवासन भाई ने बहुत अच्छी तरह से AI टूल्स के बारे में बताया, टेक्निकल बातें थी समझ में नहीं आ रही थी, फिर भी जितना मैं प्रेजेंटेशन के बारे में समझा उन्होंने कई प्रकार के टूल्स बताए, ग्राफिक्स के लिए कौन से टूल्स है, टेक्स्ट मैसेज के लिए कौन से टूल्स है, इस प्रकार से 7 टूल्स जो है AI के हैं। इसी प्रकार स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के 7 टूल्स जो है उसमें एक ऐड है अष्ट शक्ति, जो आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जिनके पास होंगी उनको अष्ट शक्ति जो है वो मिलेगी। बहन जी आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता पर बहुत कम बोला गया है, मैं थोड़ा 2 मिनट में लेना चाहता हूं। इस प्रकार से ChatGPT, कैफिल, टॉर्सफोर्स, ऐसी कृत्रिम बुद्धिमत्ता के टूल्स हैं, और उसी प्रकार आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के जो टूल्स हैं वो मैं बताने जा रहा हूं कि संकल्प संकल्पों से ब्रह्मा बाबा ने सृष्टि का निर्माण किया है। यह सबसे बड़े आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का एग्जाम्पल दुनिया के सामने है। संकल्प क्या नहीं कर सकता, क्योंकि चैट जीपीटी भी किसके पर आधारित है? इंटेलिजेंस के। किसके इंटेलिजेंस के? ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। इसीलिए निकुंज भाई ने बोला कि आर्टिफिशियल शब्द से डर लगता है। सही बात है। और जो ओरिजिन रहता है वो निकलता है संकल्प से, बुद्धि का संकल्प से, संकल्प से सृष्टि का निर्माण हुआ है। और आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता जो है, संकल्प से बड़ा टूल्स वहां पे कोई नहीं है। संकल्प का एकाग्रता, साइंस की जो भी इन्वेंशन निकली एकाग्रता से निकली, और एकाग्रता किसकी थी? ह्यूमंस की थी। इसलिए एआई बनाम एसआई का अगर बात की जाए तो स्वयंचलित जो रहता है ये एआई रहता है, और आत्मचलित यह है अपना स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन लास्ट में कुछ दो तीन बातों के ऊपर मैं प्रकाश डाल के मेरा मंतव्य समाप्त करना चाहता हूं। प्राचीन काल में ऋषि मुनि जो है बहुत अच्छी तरह से आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का प्रयोग करते थे, और आज जो हमें अजरज सी बातें लगती है कि भाई संकल्प से ऋषि मुनि कैसे पहुंच जाते थे पुष्पक विमान से, संकल्प से क्या ऐसी बातें हुई थी? हाँ, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता का इससे बड़ा एग्जाम्पल कोई नहीं हो सकता। प्राचीन काल से आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता की जो बातें हैं लगातार आ रही है, और अभी लेटेस्ट बहुत ही अच्छी उसका एग्जाम्पल से दादी जानकी जी, जिनको बेस्ट टेबल माइंडेड इन द वर्ल्ड कहा गया, तो ये सारे आध्यात्मिक प्रज्ञा के, आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता के एग्जाम्पल्स हैं। साइंस के साधन ब्रह्म कुमार जैसे संस्थानों में भी बहुत अच्छी तरह से यूज किए हैं, जैसे द लाइट नाम की फिल्म है, एनिमेशन का बहुत अच्छी तरह से यूज करके उसमें इन्वेंशन करके एक आध्यात्मिक प्रज्ञा का, आध्यात्मिक विजडम का बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है। अभी व्हाट्सएप पर सतयुग के बहुत अच्छी तरह से फोटो आ रहे थे, हमने देखा कि बहुत अच्छे नजारे थे सतयुग के। हमने इमेजिन की थी सतयुग में क्या होगा, मुरलियों में प्रवचनों में सतयुग कैसा होगा, उसकी बहुत ही डेफिनेशन थी, लेकिन एआई टूल्स में डाल के सतयुग की बहुत ही अच्छे, आपको देखा होगा आपने, बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल्स थे, सतयुग के फोटोज थे। ये ब्रह्म कुमारी अच्छी तरह से, या ब्रह्म कुमारी नहीं, आप भी अच्छी तरह से यूज कर सकते हैं। और लास्ट में मैं बोलूंगा कि शिवानी बहन जी का एग्जाम्पल्स परसों कल के दिन एक अच्छा था, उसमें बहन जी ने बताया था कि एक बड़ा अच्छा गिफ्ट बॉक्स है, ऊपर का रैपर जो है, ऊपर का रैपर आप बहुत चकाचौंध रैपर निकालो, उसमें डिब्बा है वो भी अच्छी तरह से उसको भी निकालो, और डिब्बी है उसको निकालो, अंदर का जो हीरा है वो है आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। ऊपर का सारा जो रैपर है कृत्रिमता का है, लेकिन वो भी अच्छा दिख रहा है। इसीलिए लास्ट में बोलूंगा कि जैसे मैं रेडियो जॉकी दिलीप जैन ने लास्ट में एक बात उन्होंने बताई थी कि धुन बदल कर देखो, उनकी टैगलाइन थी, उस प्रकार से हमने नजरिया बदल के देखना चाहिए। और सजना सवरना यह है कृत्रिम बुद्धिमत्ता, भाई और बहनों लास्ट में बोलूंगा सजना सवरना यह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, और साफ सुथरी जिंदगी माना आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता। उसके ऊपर दो पंक्तियां शेर मुझे याद आ रहा है, और उस बात को कहकर मैं मेरी वाणी को पुण्यवाद देना चाहता हूं। आईने में सचता सवरता हर कोई, सभी आईने में सचते सवरते हैं, क्या आईने जैसी जिंदगी थी जीता हर कोई। आईना जो रहता है बिल्कुल स्पष्ट रूप से बोलता है, और आईना कहता है कि मैं आईना हूं, जिसको गलत लगे मेरे तरफ से हट जाओ, जिनको गलत लगे हट जाओ। पत्रकारिता भी वही बात है, निष्पक्ष पत्रकारिता जो है उसी प्रकार से हमको करनी चाहिए, और आध्यात्मिक प्रज्ञा आध्यात्मिक बुद्धिमत्ता को बढ़ाना देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच, ओम शांति।
विशेष धन्यवाद भ्राता डॉक्टर सोमनाथ भाई जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूं देहरादून के सीनियर जर्नलिस्ट भ्राता कुंवर राज अस्थाना जी। आप पिछले 30 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं, आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं, उत्तराखंड कला साहित्य एवं संस्कृति परिषद उत्तराखंड सरकार के पूर्व विशेष कार्य अधिकारी हैं, देहरादून इंटरनेशनल साइंस एंड टेक्नोलॉजी फेस्टिवल के लगातार 5 वर्षों से आप आयोजन सचिव हैं, आधा दर्जन पुस्तकों का लेखन एवं संपादन किया है, आधा दर्जन सामाजिक संस्थाओं में पदाधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, डॉक्टर बीसी राय अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया है, ऐसे और भी कई विशेष अवार्ड से आपको नवाजा गया है। पिछले 14 वर्षों से उत्तराखंड से प्रकाशित एकमात्र साप्ताहिक पत्रिका दिव्य हिमगिरी का प्रकाशन व संपादन का दायित्व आप कर रहे हैं। आमंत्रित करती हूँ भ्राता कुंवर राज अस्थाना जी को कि आज के विषय पर हम सबको संबोधन दें।
मंच पर आसीन सभी विद्वजनों और कल के मंच पर भी आसीन विद्वजनों को मेरा सादर प्रणाम और मंच के सामने बैठे हुए सभी आमंत्रित अतिथियों और मेरे मीडिया के सभी सहबंधुओं को भी मेरा प्रणाम। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, जहां बाबा केदार और बद्री विशाल स्वयं भू रूप से विराजित हैं, जो गंगा और यमुना का उद्गम स्थल है। मैं उस देवभूमि से ब्रह्म बाबा की इस तपोभूमि को प्रणाम करने के लिए आया हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। बदलते परिवेश में नई सामाजिक व्यवस्था के लिए दृष्टि और मूल्य के ऊपर जो कल से मंथन चल रहा है, उसमें एक आज नया विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर भी आज मंथन चल रहा है, और मेरे से पूर्व कई वक्ताओं ने आध्यात्मिक इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर अपने जो विचार रखे हैं, मुझे लगता है कि उन विचारों के बाद उसकी टेक्नोलॉजी के अंदर जाने का कोई औचित्य नहीं बचता है, क्योंकि सब लोग उसके बारे में विस्तार से बता चुके हैं। बदलते परिवेश में मीडिया के क्षेत्र में भी बहुत ही तकनीकी का विकास हुआ है, बहुत टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशंस हुए हैं, और जो डिजिटल मीडिया का युग है उसमें ज्ञान का भंडार हमारी मुट्ठी में आ गया है। इस ज्ञान के भंडार से हमें क्या लेना है और क्या नहीं लेना है इस ज्ञान सागर से, ये हम सभी पर निर्भर करता है। हमने देखा है और कल भी इस बारे में चर्चा थी, राम राज्य की भी चर्चा थी, त्रेता युग हो या द्वापर युग हो, सभी जगह अच्छाइयां भी थी और बुराइयां भी थी। ये हमें तय करना है कि हमें उनमें से किन चीजों को लेकर आगे बढ़ना है। एक छोटा सा दृष्टांत है, कृष्ण का और दुर्योधन का संवाद होता है, तो दुर्योधन कृष्ण से कहते हैं कि धर्म और अधर्म क्या है ये मुझे भी पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन जिसमें लगता है वो आपको अधर्म लगता है। तो जो शिवानी दीदी ने भी कल बताया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा परिवेश वैसा ही होगा आपका संस्कार। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो ज्ञान का जो भंडार है, जिसमें से हमें क्या चूज करना है, क्या लेना है क्या नहीं लेना है, इसी के लिए सामाजिक मूल्य और दृष्टि इसकी आवश्यकता है, जिस पर आज ये चिंतन चल रहा है। अभी हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कर रहे थे और चैट जीपीटी की बात कर रहे थे, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसके बहुत सारे टूल्स हैं, जिसमें इंटरनेट ऑफ थिंग्स हैं, मशीन लर्निंग सिस्टम्स हैं, और बहुत सारे टूल्स हैं जिस पर भी अभी मेरे से पूर्व वक्ता उन्होंने विस्तार से बताया। सामाजिक मूल्य हमें यह सिखाता है कि हम ये जितनी भी तकनीक हैं, जितनी भी प्रौद्योगिकी हैं, जितनी भी जो नई नई चीजें आ रही हैं, हम इसका उपयोग लोक हित में कैसे करें। जहां तक मीडिया के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि मीडिया में जो लोग संपादी के स्तर पर हैं और जो लोग पत्रकारिता के एक क्षेत्र में एक लेवल को प्राप्त कर चुके हैं, वो अपने आप को बुद्धिजीवी के एक परिपक्व स्तर पर अपने आप को महसूस करते हैं। और जब वो अपने आप को मैच्योरिटी लेवल पर जब महसूस करने लगते हैं, तो वहां सीखने की जो स्पेस है वो खत्म हो जाता है। और यही कारण है कि बहुतायत, बहुत बड़ी संख्या में हमारे पत्रकार बंधु, डेस्क पर काम करने वाले लोग वो सुनना नहीं चाहते। मेरा समय बहुत कम है, मैं इसे खत्म करना चाहूंगा। अभी संजय द्विवेदी जी हमारे बीच में बैठे थे, कल मैं परमार जी को भी सुन रहा था, तो उन्होंने सामाजिक मूल्यों में एक चीज बताई कि शिक्षा का बड़ा महत्व है, और बताया कि जब वो विश्वविद्यालयों में गए और बहुत सारी जगह गए, तो उन्होंने बताया कि टीचर्स का भी, प्रोफेसर्स का भी ओरिएंटेशन की जरूरत है। तो मैं एक निवेदन करना चाहूंगा इस मंच से, क्योंकि यहां पर कल से लेकर आज तक बहुत सारे विश्वविद्यालयों के जो मास कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट हैं उनके प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर, विभागाध्यक्ष यहां पर आए, तो मैं द्विवेदी जी और परमार जी और जो दूसरे जो यहां पर लोग आए, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि पत्रकारों को भी ओरिएंटेशन की जरूरत है। जब एक आईएएस और एक पीसीएस जब अपनी सर्विस के अंदर एक प्रमोशन पाता है, तो उसके लिए कंपलसरी होता है कि वो ट्रेनिंग में जाए। आईएएस के लिए कंपलसरी है कि लाल बहादुर शास्त्री मसूरी एकेडमी के अंदर जाता है ट्रेनिंग के लिए, एक महीने की, दो महीने की, तीन महीने की। पीसीएस के लिए भी हर राज्य के अंदर ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वो वहां पर जब भी उसका प्रमोशन होता है तब जाता है। विश्वविद्यालयों में भी जब सेमेस्टर स्टार्ट होता है तो एक एग्जाम, ऑनलाइन एग्जाम, उस टीचर को भी पास करना पड़ता है कि उसने क्या पढ़ाना है, और उसको अपने पढ़ाने के अंदर रोज, क्योंकि अगर वो टेक्नोलॉजिकल उसके सब्जेक्ट्स हैं, तो उसको रोज जो भी डेवलपमेंट हो रहा है उस डेवलपमेंट को अपने कोर्स के अंदर समाहित करना है, तो उसको पढ़ना है फिर पढ़ाना है। यह प्रोसेस पत्रकारिता के क्षेत्र में भी लगातार चलना चाहिए, और ऐसा जो प्रोसेस है वो संजय द्विवेदी जी और परमार जी जैसे जो पत्रकारिता के क्षेत्र की जो बड़ी संस्थाएं हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन है, बड़े विश्वविद्यालय हैं, ये ही कर सकते हैं और इनको करना चाहिए। और यदि वो देवभूमि उत्तराखंड से अगर इसको करना चाहें तो हम उनके लिए स्वागत है, वो आए और हम उनके लिए वहां पर व्यवस्था करेंगे, लेकिन इसकी बहुत जरूरत है। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, धन्यवाद। और ब्रह्म कुमारी का मैं बहुत विशेष धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे यहां पर बोलने का अवसर प्रदान किया। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।
विशेष विशेष धन्यवाद भ्राता कुंवर राज अस्थाना जी का। अब मैं आमंत्रित करती हूं ब्रह्म कुमारी मीडिया विंग के जोनल कोऑर्डिनेटर जयपुर से पधारी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी चंद्रकला बहन को। चंद्रकला बहन पिछले 4 दशक से अधिक समय से आध्यात्मिक मार्ग पर अग्रसर हैं। आप जयपुर वैशाली नगर स्थित राजयोगा रिट्रीट सेंटर के डायरेक्टर हैं। जयपुर और उसके आसपास में स्थित 40 से अधिक ब्रह्मा कुमारी राजयोग मेडिटेशन सेंटर्स की आप कोऑर्डिनेटर हैं। आप ने जर्नलिज्म में मास्टर्स डिग्री हासिल की है। आपने ऑल इंडिया रेडियो जयपुर में 5 साल असिस्टेंट न्यूज कोऑर्डिनेटर पद पर कार्य करने का आपको अनुभव है। आप सुयोग्य राजयोग की शिक्षिका हैं, प्रभावशाली वक्ता हैं। आपने देश विदेश में अनेक आत्माओं को आध्यात्मिकता की ओर अग्रसर किया है। आपसे अनुरोध है कि आज के विषय पर हम सबको प्रेरणादायी शब्दों से उत्साहित करें। चंद्रकला बहन।
ओम शांति। सभी प्रेम से बोले ओम शांति। जगत नियता की सर्वोच्च रचना, सम्माननीय मंच, सभा में बैठे हुए सभी भाई और बहने, आज का विषय समय के अनुसार काफी महत्वपूर्ण विषय है। अगर इस विषय को मैं अपनी भाषा में कहूं, आध्यात्मिक मेधा बनाम कृत्रिम मेधा। कृत्रिम शब्द अपने आप में ही उजागर कर देता है, कृत्रिम कृत्रिम रहता है, जड़ जड़ रहता है, मानव मानव रहता है। ये ठीक है, तकनीकी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हमने काफी विकास किया है और उसका प्रयोग भी जरूरी है, समय के अनुसार प्रयोग करना अच्छी बात है, लेकिन उपयोग की बजाय मानव स्वयं उसका उपयोग बन जाए वो शायद उचित नहीं। हम चीजों को उपयोग करें वो ठीक है, चीजें मुझे उपयोग करने लग जाएं, मेरी शक्ति समाप्त हो जाए वो शायद ठीक नहीं, और यही खतरा मानव पर मंडरा रहा है। आज के अस्तित्व पर कहें, मानव के अस्तित्व पर कहें, एक बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। चीजों का उपयोग करना ठीक है, आज बाजार से कुछ खरीदारी करनी है, ऑनलाइन हमारा कितना समय चला जाता है, हम अपने बहुमूल्य समय को नष्ट करते हैं, लेकिन बहुमूल्य समय मेरा इस्तेमाल हो अपनी शक्ति को जागृत करने में, ये मुझे समझना है। और आध्यात्मिक मेधा अपनी शक्ति को जो हमें विरासत में मिली है, मानव होने के नाते मानव को सर्वोच्च कहा है, उस शक्ति को जागृत करने की जरूरत है। आध्यात्मिकता का अर्थ ही है आंतरिक मानसिक अंतर के मूल्य जो जीवन को श्रेष्ठता प्रदान करते हैं। अगर कोई मुझे जोक सुनाए, आप मुझे जोक सुनाते हैं, एक बार तो हो सकता है बहुत अच्छा लगे और मुझे हंसी आ जाए, लेकिन अगर आप बार बार रिपीट करें तो, वही चीज आप बार बार दोहराएं तो शायद वो स्वीकार्य नहीं होगा। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप जोक कहेंगे वो उसी लेवल पर ठहाके लगाएगा और हर बार उसी लेवल पर चलेगा, कहीं अंतर नहीं। आध्यात्मिक मूल्य हमें फ्लेक्सिबिलिटी देते हैं, समझने की शक्ति देते हैं, रियल सेंस में कार्य करने की क्षमता को बढ़ाते हैं, व्यक्ति को एक दूसरे की सुनने की क्षमता प्रदान होती है, हम एक दूसरे के भावों को समझ सकें, एक दूसरे को सुन सकें और उन भावों को समझ करके कार्य कर सकें, उसमें अंतर महसूस कर सकें। लेकिन आर्टिफिशियल, वो कहते हैं एक ही लाठी से सबको नहीं चलाना चाहिए, वो तो क्या करेगा, समझ रहे हैं, एक ही लाठी से हम सबको हांक नहीं सकते, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो वही करेगा क्योंकि है ही वो कृत्रिम। आध्यात्मिकता की मेधा अर्थात आत्मिक मेधा को बढ़ाने की जरूरत है, और आत्मिक मेधा ही खुशी लाती है। मनुष्य को खुशी चाहिए, मनुष्य को शक्ति चाहिए, और वो आत्मिक मेधा प्रदान करती है, और आत्मिक मेधा को जागृत करने के लिए हमें पुनः पुनः परमात्मा की ध्यान को, उस ध्यान की ओर अपने आप को बढ़ाना होगा। अगर दुनिया की बात करती हूं, जनरल भाषा का इस्तेमाल करती हूं, तो प्रार्थनाओं को स्थान देना होगा, दुआओं को स्थान देना होगा। हम दुआओं से एक दूसरे की शक्ति को बढ़ाते हैं। आज हमारे घर में एक छोटा बच्चा भी है, हम उसको बहुत प्यार से दुआ देते हैं, हाँ बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुमने बहुत अच्छा कार्य किया, तुम आगे बढ़ो। क्या मशीन आपको ये दुआ देगा? तो ये आत्मिक दुआएं, आत्मिक मेधा, इसके लिए ध्यान की आवश्यकता है, उससे परम शक्ति से संबंध स्थापित करने की जरूरत है। परम शक्ति से संबंध स्थापित करना यानी अपने अंतर की शक्ति को जागृत करना। बात अभी थोड़ी देर पहले भी आई थी, मन की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, बोलने की शक्ति, व्यवहार में आने की शक्ति। कहते हैं मनुष्य बने हो, सोचना तो सीख लिया, लेकिन सोचना क्या है ये आध्यात्मिकता सिखाती है। माने बोलना तो सिखाया, लेकिन बोलना क्या है ये मशीन नहीं सिखाता। चलना तो हम सीखे, लेकिन किन राहों पर चलना है ये आध्यात्मिकता देती है। तो आध्यात्मिकता अपने आप में व्यक्तित्व का निर्माण करती है, आध्यात्मिकता जीवन को श्रेष्ठ बनाती है, आध्यात्मिकता टेक्नोलॉजी को यूज करने की समझ देती है, और अंदर की साइलेंस, मानसिक साइलेंस जो आज विश्व को चाहिए, जो शांति की जरूरत है, जो खुशी की जरूरत है, वो आध्यात्मिकता प्रदान करती है। मैं तो कहूंगी जहां भी आप बैठे हैं, सिर्फ एक मिनट के लिए शांति में बैठे, आप पाएंगे आपकी शक्ति जागृत होती है। तो सिर्फ एक मिनट के लिए आप सीधा होकर के बैठे और अपने मन को संकल्प दें, मैं शांत चित, प्रसन्न चित, प्रभु दुआओं से सदा आगे बढ़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं सर्व प्रभु द्वारा प्राप्त शक्तियों का अपने जीवन में इस्तेमाल करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूं। ये सर्व शक्तियां, सहन शक्ति, आंतरिक मानसिक शक्ति, सुनने की शक्ति, एक दूसरे को सम्मान देने की शक्ति, सहयोग की शक्ति, ये अनेकानेक शक्तियां मुझे और चारों तरफ समाज को, प्रकृति को, सबको सुंदर बनाने में मदद कर रही है। प्रकृति भी सुंदर, श्रेष्ठ, मानव जीवन भी खुशहाल, यही दुआएं, परमात्म दुआएं मेरे जीवन और सबके जीवन में फैल रही है। रिलैक्स। इस तरह अगर अपनी शक्ति को जागृत करें तो मैं समझती हूं हम टेक्नोलॉजी का उपयोग भी सही कर पाएंगे और अपनी आत्मशक्ति को भी बढ़ा पाएंगे। ओम शांति।
बहुत सुंदर। ऐसी शांति की अनुभूति कराने के लिए चंद्रकला बहन का बहुत बहुत विशेष करतल ध्वनि से धन्यवाद। मीडिया के कुप्रभावों से बचकर सकारात्मक दृष्टि को अपनाएं, यही इसका विकल्प है। एआई के दौर में मानवीय मूल्यों के साथ साथ मीडिया में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं, यही शुभ भावना, शुभकामना आप सबके लिए है। ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस करने की कोशिश भी करे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, लेकिन आज आप सबने जाना, सीखा कि कैसे स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस के समन्वय से हम सभी सफल होंगे, एक मीडिया प्रोफेशनल्स बनेंगे। और इसी शुभ आशा और लक्ष्य के साथ हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं। अब मैं अनुरोध करती हूँ ब्रह्मा कुमारी बहनों से कि आज मंचासीन हमारे वक्ताओं को ईश्वरीय सौगात भेंट करें। बहनें आए, आदरणीय चंद्रकला बहन से अनुरोध है। आप सबको नींद के प्रभाव से जगाने के लिए मैं डॉक्टर सरिका बहन को इनवाइट करती हूँ। फ्यू सेकंड्स, बहनें तैयारी करें। सौगात ले आएंगी बहनें।
समय चक्र आगे बढ़ता जा रहा है और समय के इस अवधि को देखते हुए मैं देख रही हूँ हमारे सामने जितने भी बंधुजन और बहनें बैठी हैं, थोड़ा सा अभी मैं सुस्त वाला माहौल महसूस कर पा रही हूँ, तो एक बार जगाने के लिए बहुत जरूरी है। अभी हमारे सामने दीदी चंद्रकला जी ने जो वक्तव्य रखा उनके लिए जो पंक्तियां हैं, नारी पर्वत को झुका सकती है, नारी सागर को हिला सकती है, ये नारी वो नारी है जो भगवान को भी अपनी गोदी में खिला सकती है। तो सभी नारी शक्ति अपने लिए जोरदार तालियां, ताकि आज वो शक्ति हम इस मंच से महसूस करें और एक साथ एक स्वर में इस सभागार में भारत माँ का जय घोष करें। क्योंकि जब स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही है, तो हमारी राष्ट्रीयता, हमारे भारत देश की बात हमारे दिल के जज्बात के साथ निकलनी चाहिए और उसका एकमात्र जरिया भारत माँ का जयघोष है। तो मेरे साथ सब हम तीन बार मिलकर बोलेंगे भारत माता की। आवाज नहीं आई, एक बार और इससे प्रयत्न करें, जब तक आवाज ज्यादा नहीं होगी। भारत माता की, ऐसे नहीं, पूरी भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, एक बार जोरदार तालियां हम सभी के लिए। हर एक दिल में निशानी छोड़ जाएंगे, दिलों में दर्द, आंखों में पानी छोड़ जाएंगे, जिसे जमाना याद रखेगा सदियों तक। ब्रह्म कुमारी के सभी माताएं और बहनें और सभी बंधुजन जमाने के लिए ऐसी कहानी छोड़ जाएंगे।
डॉक्टर सारिका जी को सौगात देंगी चंद्रकला बहन। आप सभी अभी भोजन करके साइट सीइंग के लिए आप सभी एकत्रित होंगे। आज साइट सीइंग के लिए जाने के पश्चात आप लास्ट पॉइंट पीस पार्क में रुकेंगे, जहां पर आपको आउटडोर गेम्स और एंटरटेनमेंट प्रोग्राम का आयोजन है। रात्रि को भोजन जो है आप सभी ज्ञान सरोवर में आके करेंगे, इसलिए समय पर यहां पर भी जरूर पहुंचना है। ओम शांति।